15 अक्टूबर दिन सोमवार दिन भर मैं हूं रेहान फजल। मीटू अभियान के जवाब में एमजे अकबर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
नहीं, गलत बात है कि वो इस तरह से डेफेमेशन केस और क्या क्या कर रहे हैं। ये तो बहुत ही मतलब और एक तरह से महिलाओं की आवाज को चुप कराने की कोशिश है।
सीरिया में इस बात के पक्के सबूत कि सरकारी सेनाओं ने रासायनिक हथियारों का किया इस्तेमाल।
क्लोरीन इज अ वेरी हैवी केमिकल, इट सिंक्स डीप अंडरग्राउंड, यू नो मेनी पीपल हैड शेल्टर्ड डीप अंडरग्राउंड।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
मीटू अभियान के तहत विदेश राज्य मंत्री और पूर्व संपादक एमजे अकबर पर बहुत सी महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इसके जवाब में एमजे अकबर ने आज आरोप लगाने वाली एक महिला पत्रकार पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। रविवार को अकबर अपनी विदेश यात्रा से भारत लौटे थे और उन्होंने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को निराधार बताया था। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार अकबर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बीबीसी की को इस बात के सबूत मिले हैं कि 5 साल पहले सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने अपने देश में हथियारों के भंडार को नष्ट करने पर सहमति जताई थी और तब से सीरिया में 100 से अधिक रासायनिक हमले हो चुके हैं। इन हमलों में अधिकतर क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया गया है। असद लगातार इस बात से इनकार करते रहे हैं कि उनकी सेना के पास रासायनिक हथियार हैं। जॉर्डन और सीरिया की सीमा पर 3 साल के अंतराल के बाद पहली बार कुछ कारों ने बॉर्डर पार किया। इस कमर्शियल बॉर्डर को 3 साल पहले तब बंद कर दिया गया था जब इस पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। इस साल जुलाई में सीरियाई सेना ने इस पर अपना नियंत्रण वापस लिया। इस बॉर्डर के बंद होने की वजह से दोनों देशों के बीच होने वाला लाखों डॉलर का आयात निर्यात भी बंद हो गया था। सीरिया में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य मोहम्मद हमशो ने इस बॉर्डर के दोबारा खुलने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा, अब इस इलाके में सुरक्षा के हालात स्थिर हैं। यही वजह है कि सीरियाई सरकार और जॉर्डन सरकार ने इस बॉर्डर को दोबारा खोलने का फैसला किया है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्तों के लिहाज से इस बॉर्डर का अच्छा खासा महत्व है। इससे दोनों देशों को आर्थिक लाभ होगा। ये थे सीरिया में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक सदस्य के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इटली के प्रधानमंत्री मैटियो सेल्विनी ने यूरोपीय संघ की ओर से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को मूर्खतापूर्ण कदम बताया है। साल 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था तब यूरोपीय संघ ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे। मैटियो सेल्विनी ने कहा है कि यह प्रतिबंध सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मूर्खता को दर्शाते हैं। मैटियो सेल्विनी ने बुधवार को रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा,
io mercoledì torno per l'ennesima volta in Russia perché insieme
मैं बुधवार को मॉस्को जा रहा हूं। इस दौरान रूस पर यूरोपीय संघ के लगाए गए प्रतिबंधों पर भी चर्चा होगी। दरअसल यूरोपीय संघ के सदस्य बिना किसी सरकार की सलाह लिए रूस पर लगे प्रतिबंधों को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाना चाहते हैं। यह प्रतिबंध एक तरह से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से मूर्खतापूर्ण कदम है। ये थे इटली के प्रधानमंत्री मैटियो सेल्विनी के शब्द। सऊदी के लापता पत्रकार जमाल खाशोजी की तलाश से जुड़ी रिपोर्टों के मुताबिक तुर्की के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि जांच टीम इस्तांबुल स्थित सऊदी के वाणिज्य दूतावास में तलाशी ले सकती है। खाशोजी अंतिम बार इसी दूतावास में जाते हुए दिखे थे, जिसके बाद वे लापता हो गए। तुर्की ने सऊदी अरब पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने दूतावास के भीतर ही खाशोजी की हत्या कर दी है। जर्मनी के शहर कोलोंग में एक हथियारबंद आदमी ने एक महिला को जबरन एक फार्मेसी में बंद करके रखा है। इस घटना की वजह से पुलिस ने शहर के प्रमुख रेलवे स्टेशन बंद कर दिए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे इस अभियान से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें। पुलिस ने फिलहाल किसी तरह की गोलीबारी होने की पुष्टि नहीं की है और अभी यह भी साफ नहीं हुआ है कि यह मामला चरमपंथ से जुड़ा है या नहीं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। मी टू अभियान के दौरान अपनी पूर्व पत्रकार सहयोगियों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। आज अकबर की तरफ से उनकी एक पुरानी सहयोगी प्रिया रमणी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर अब तक विपक्षी दलों की खामोशी को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी चिंता जताई है। बीबीसी संवाददाता सलमान रवि की रिपोर्ट सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से।
ये है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक महिलाएं सामने आकर अपने साथ हुए शोषण और यौन उत्पीड़न की घटनाएं उजागर कर रही हैं और प्रताड़ित करने वालों का नाम भी सामने ला रही हैं। मगर इन सब के बावजूद उत्पीड़न के आरोपियों पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं बन पाया है। मीटू अभियान के दौरान सबसे ज्यादा आवाजें बॉलीवुड और मीडिया में काम करने वाली महिलाओं की हैं। मीडिया में सबसे ज्यादा आरोपों का सामना अगर किसी को करना पड़ा है तो वो है एमजे अकबर।
महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार के अंदर, इतने बलात्कार हो रहे हैं इस सरकार के अंदर, यूपी के अंदर जो दहशत का माहौल है, हम उसके खिलाफ हैं, हम मोदी के खिलाफ हैं जो एमजे अकबर ने छेड़खानी करी है पत्रकार हमारी पत्रकारी का।
सोमवार को अकबर ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली उनकी एक पूर्व सहयोगी के खिलाफ अदालत में मानहानि का मामला दर्ज किया है। यहाँ सवाल उठता है कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन सिर्फ औपचारिक था या फिर कांग्रेस इस मामले को लेकर वाकई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने को लेकर गंभीर है। मैंने यह जानने के लिए पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी से बात की तो उन्होंने ज्यादा कुछ कहने से इनकार कर दिया।
देखिए, मैंने तो अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है और मैं इस पे कोई और इंटरव्यू या कमेंट नहीं कर रही हूँ। भाई साहब, मैं अगर प्रवक्ता हूँ तो मैं पार्टी की स्टैंड दे रही हूँ,
क्योंकि जिस तरह से आवाजें उठ रही हैं इतने चारों तरफ से, उस हिसाब से मैं जानना चाह रहा था आपसे।
मैंने वहाँ पे आपको वो भी लिख कर दे दिया है, इट्स ऑलरेडी ऑन माय टाइमलाइन, यू जस्ट नीड टू हैव अ लुक एट इट। के लिए भी आपको बता रही हूँ, एंड व्हेन आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन टेलीविजन देयर इज नो रीजन फॉर मी टू कमेंट ऑन रेडियो।
दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के दतिया में एक सभा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बलात्कार के आरोप में जेल में बंद भाजपा के एक विधायक की तो चर्चा की मगर उन्होंने एमजे अकबर का नाम भी नहीं लिया।
बीजेपी का एमएलए रेप करता है, बलात्कार करता है, प्रधानमंत्री उसको बचाने की कोशिश करते हैं, प्रधानमंत्री ने ना उस एमएलए को अपनी पार्टी से निकाला, ना अपने भाषणों में प्रधानमंत्री ने महिलाओं के बारे में या उस एमएलए के बारे में एक शब्द बोला।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद उदित राज अकबर के बचाव में आए और कहा कि बिना सुबूत के इल्जाम लगाना ठीक नहीं है।
उसके कान पर बंदूक की नाल लगा कर रखी गई है 10 साल तक। ये भाई, इससे औरतों का ही नुकसान हो रहा है। कहने का मतलब कि ब्लैंकेट नहीं होना चाहिए, केस बाई केस होना चाहिए। कल अगर वो इन्वेस्टिगेशन के बाद और एमजे अकबर पाक साहब निकल जाते थे, एमजे अकबर तो बर्बाद हो ही गए ना।
जानकारों को लगता है कि दूसरे विपक्षी दलों की खामोशी भी काफी चौंकाने वाली है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन्स एसोसिएशन की कविता कृष्णन कहती हैं कि हमाम में सब एक जैसे हैं।
तो ये इतनी गलत बात है कि वो इस तरह से डेफेमेशन केस और क्या क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत ही मतलब, और एक तरह से महिलाओं की आवाज को चुप कराने की कोशिश है। तो ये सिर्फ प्रिया रमणी को धमकी नहीं है, सोचिए कि मीटू में तो हजारों महिलाएं सामने आई हैं, सैकड़ों महिलाएं मतलब, तो वो सैकड़ों महिलाओं को धमकी है। जो सामने नहीं भी आई हैं अब तक उनको भी धमकी है कि खबरदार जो सामने आए और कोई भी आपसे ताकतवर के खिलाफ आपने आवाज उठाया।
भारतीय जनता पार्टी की ही राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यन स्वामी पार्टी के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने जांच की मांग की है।
मैं उसकी जांच के लिए कहा था, मैं नहीं जान पता एग्जैक्टली क्या कहा, तुम्हारे मीडिया पर मैं निर्भर कर रहा हूँ, परंतु नेचुरली ये पार्लियामेंट में इश्यू बनेगी यदि इसको नहीं निपटाएंगे तो।
एमजे अकबर ने अपने साथ काम करने वाली सिर्फ एक पूर्व सहयोगी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया है। अभी ये नहीं पता चल पाया है कि उनके खिलाफ सामने आने वाली उनकी हर पूर्व सहयोगी के खिलाफ भी क्या वो ऐसा ही करेंगे। यह भी स्पष्ट नहीं है कि जिस विदेशी महिला पत्रकार ने अकबर पर आरोप लगाए हैं तो क्या वो उनके खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा करेंगे।
ये थी सलमान रावी की रिपोर्ट। एमजे अकबर द्वारा कानूनी प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद से इन प्रभावित महिलाओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, यही सवाल पूछा मैंने बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य से।
एम जे अकबर के एक वक्तव्य के बाद जिसमें उन्होंने सभी उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए उनसे अपने आप को अलग किया और फिर आज उन्होंने एक महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की है, उसके बाद मैंने उन सभी औरतों से बात करने की कोशिश की, करीब एक दर्जन औरतों ने एम जे अकबर के खिलाफ आरोप लगाए हैं जिनका एम जे अकबर ने खंडन किया है और कहा है कि एक राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी है उनके खिलाफ। उनमें से एक शुतपा पॉल जो पत्रकार हैं उन्होंने अपनी बात मुझसे बांटी और उन्होंने कहा कि वो ऐसा महसूस करती हैं कि जो बड़ी ताकतें हैं उन्होंने उनको एक तरह से हाशिए पे खड़ा कर दिया है और वो बहुत सदमे में हैं, लेकिन वो ये भी देख रही हैं कि उनके पास क्या कानूनी प्रक्रिया है जिसके ज़रिए वो ये देखें कि सच्चाई और न्याय कैसे मिल सकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं है बल्कि सभी औरतों के लिए है।
और ये जो अकबर ने कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है वो अदालत में गए हैं, आपको लगता है कि इससे ये जो पूरी मुहिम है उसको झटका लगा है?
एम जे अकबर भी अदालत में गए हैं और आलोक नाथ जो कि एक अभिनेता हैं वो भी अदालत में गए हैं, उन्होंने एक सिविल डिफेमेशन सूट किया है विंता नंदा के खिलाफ। लेकिन इसके बावजूद जो औरतें ट्विटर पर लिख रही हैं, ट्विटर जो माध्यम है सोशल मीडिया का जिससे ये पूरी बातें सामने आई, उनमें बड़े नाम हैं जैसे बरखा दत्त एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी लिखा कि अगर सरकार एम जे अकबर को नहीं हटाती तो हमें मीडिया के तौर पर पत्रकारों के तौर पर उनके सारे सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि हम उन औरतों को नहीं मतलब उनके साथ नहीं छोड़ सकते जिन्होंने इतनी हिम्मत करके बोलने की कोशिश की है। बल्कि आज हिंदू अखबार में भी एक संपादकीय लिखा गया जिसमें बड़े कड़े शब्दों में इस चीज़ की आलोचना की गई कि बिना जाँच के बिना किसी इंक्वायरी के एम जे अकबर का इस तरह के आरोप लगाना औरतों पर कि एक राजनीतिक कोई कॉन्स्पिरेसी है ये शोभा नहीं देता और उनका इतना लंबा पत्रकारिता का एक अनुभव है, उन्हें एक बार पीछे हटकर जांच के बाद अपनी बात को सामने रखना चाहिए था। सुहासिनी हैदर एक और वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने भी कहा कि ये मिनिस्टर हैं, यहाँ पे गौर करने की बात ये कि सब ताकतवर लोग हैं जिनके पीछे प्रधानमंत्री और पूरा कैबिनेट है, जिनके पास बहुत अच्छी बड़ी कानूनी फर्म है और वो इस तरह की बात अगर जब कर रहे हैं तो एक तरह से ये हम सब की एक परीक्षा है और हम सबको इसमें बहुत ध्यान से अपना पक्ष रखना है। तो अभी तो ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ये जो पूरा एक उबाल पे मूवमेंट आया है ये रुका है, लेकिन हाँ कानूनी कार्रवाई एक बहुत बड़ा खतरा है जो उन सभी औरतों पर मंडरा रहा है, उन सबके खिलाफ मानहानि के मुकदमे हो सकते हैं और हो सकता है आने वाले समय में हों जिन्होंने बड़े बड़े खासतौर पर बड़े नामों के आगे आरोप लगाए हैं।
ये थी दिव्या आर्य। केरल में एक लंबा मार्च आज समाप्त हो गया जिसमें राज्य सरकार से ये मांग की जा रही थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील करे जिसमें 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को सबरीमला मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। इस मार्च का नेतृत्व बीजेपी ने किया और इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
इस तरह की जोशीली आवाज आज केरला के राजधानी तिरुवनंतपुरम में आपको हर जगह सुनने को मिली। हजारों की तादाद में सबरीमला के स्वामी अयप्पा के मंदिर के पारंपरिक प्रणाली को जारी रखने के लिए यह अपील की जा रही थी। स्वामी अयप्पा की बड़ी फोटो फ्रेम को हाथ में पकड़े हुए महिलाओं ने इस प्रदर्शन में बहुत बड़ी तादाद में भाग लिया। उनकी मांग थी कि राज्य के सीपीएम के नेतृत्व वाली लेफ्ट फ्रंट सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करें कि वो 10 और 50 साल की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत वापस लें। केरला ने बहुत सारी रैलियां देखी हैं, लेकिन कभी भी इतनी बड़ी तादाद में एक धर्म के निजी विषय पर इस तरह की रैली नहीं देखी है। धार्मिक संस्थाओं ने इस प्रदर्शन में भाग लिया, लेकिन उनको समर्थन देते हुए बीजेपी ने इसका नेतृत्व ले ही लिया। प्रदर्शन के बाद केरला बीजेपी के अध्यक्ष श्रीधरन पिल्ले ने बीबीसी को बताया, इस लंबी परेड से हम अय्यप्पा स्वामी के विश्वासियों से ये कहना चाह रहे थे कि उनको हमारा समर्थन है। हमारा नारा सिर्फ सबरीमला को बचाना है। यहाँ की सीपीएम की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दुरुपयोग करते हुए सबरीमला को खत्म करना चाह रही है। राज्य सरकार को अपना रुख बदलना होगा। ये थे श्रीधरन पिल्लई के शब्द। लंबी परेड तो आज खत्म हो गई, लेकिन केरला में एक तरह का तनाव महसूस होने लगा है। दरअसल बुधवार को मलयालम महीने के अनुसार मंदिर के दरवाजे खुलने जाने हैं और कुछ संस्थाओं ने ये धमकी दी है कि अगर महिलाएं मंदिर में जाना चाहती हैं तो उनको दूसरे महिलाओं पर चलकर जाना होगा। लेकिन श्रीधरन पिल्ले ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई महिला या महिलाएं मंदिर में जाना चाहती हैं तो उनको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन महिलाओं के प्रवेश के बारे में कुछ दिनों से महिलाओं को धमकी दी जा रही है, जैसे कि कन्नूर जिले के कॉलेज टीचर रेशमा निशान के फेसबुक पर्चे पर उनके व्रत के बारे में पढ़कर कुछ लोगों ने उनके घर पर पहुंचकर धमकी भी दी है। रेशमा निशान ने बीबीसी को बताया, हमने 41 दिनों से व्रत रखा था जैसे रखना चाहिए। कुछ लोग हमारे घर पर आए और चिल्लाया भी और धमकी भी दिया कि अगर हम वहां गए तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन हम तो जा रहे हैं। हमारा व्रत 17 अक्टूबर को खत्म होता है तो हम शायद 18 तारीख को जाएंगे। ये थे रेशमा निशांत के शब्द। पिछले 5 दिनों से लंबी परेड में किसी भी तरह का हादसा नहीं हुआ है। अभी ये देखना होगा कि पुलिस किस तरह का इंतजाम करेगी अगर महिलाएं मंदिर में प्रवेश करना चाहती हैं तो। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। पिछले 4 दिन से अशांत चल रहा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का माहौल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी संख्या में कश्मीरी छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई वापस नहीं होती है तो सभी छात्र कश्मीर वापस लौट जाएंगे। एमयू में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाने और जम्मू कश्मीर में मारे गए चरमपंथी मनान वानी के समर्थन में शोक सभा किए जाने के बाद कुछ छात्रों पर हुई कार्रवाई के बाद से ही यहां का माहौल गर्म है। पूरी जानकारी दे रहे हैं समीर आत्मक मिश्र।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 2 कश्मीरी छात्रों के निलंबन और 7 को कारण बताओ नोटिस के बाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों में काफी गुस्सा है। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को धमकी दी है कि यदि इन छात्रों का निलंबन वापस न हुआ तो सभी कश्मीरी छात्र वापस चले जाएंगे। इन छात्रों ने कल एएमयू प्रशासन को इस बारे में बाकायदा एक पत्र भी दिया है। छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे सज्जाद सुभान कहते हैं,
अगर इस तरह का माहौल रहा मुझे नहीं लगता हम पढ़ पाएंगे। तो मैंने कल प्रॉक्टर से भी यही बात रखी कि मुझे लगता है कि जो 17 को इस बार सरसरी डे होगा तो इस दिन कश्मीरियों ने डिसाइड किया है कि वो एनमास यानी पूरा मास्क डिग्रीज यहाँ सरेंडर करके कश्मीर गोबे का नारा देंगे।
पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में मारे गए चरमपंथी और एएमयू के छात्र रहे अब्दुल मनान वानी की मौत के बाद उनके सम्मान में कथित तौर पर शोक सभा करने, नमाज पढ़ने और देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में कुछ छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने 2 छात्रों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया है और अन्य की पहचान की जा रही है। अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय साहनी कहते हैं,
पुलिस की तरफ से एक FIR लॉन्च किया गया है, इसमें 2 स्टूडेंट्स नेम्ड हैं, बाकी अननेम्ड हैं। सारी चीजें क्लियरफाई करने के लिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक लेटर भेजा गया है, वहाँ जो भी CCTV कैमरे और बाकी चीजें हैं उनकी फुटेज के आधार पर उनकी सारी चीजें हैं, बाकी कार्रवाई की जाएगी। और इस पे चूंकि सेंसिटिव मामला है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक SIT का गठन किया गया है जिसमें एक डिप्टी SP, एक इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर हैं। बाकी जिन स्टूडेंट्स के प्राइमरी लेवल पर नेम आ रहे हैं उनके नाम को और उनका एड्रेस जो है यहाँ के रहने वाले हैं उनके एक्टिविटीज को वॉच करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को उनके नाम और डिटेल भेजे जा रहे हैं और वहां से हम लोग सत्यापन करा के उनकी रिपोर्ट मंगवाएंगे।
बताया जा रहा है कि परिसर का माहौल अशांत होने के कारण तमाम कश्मीरी छात्र वापस चले भी गए हैं। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को 17 अक्टूबर तक का समय दिया है। इस दिन AMU के संस्थापक सर सैयद अहमद खां के जन्मदिवस पर सर सैयद डे मनाया जाता है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों से वापस न जाने की अपील कर रहा है। AMU के प्रॉक्टर मोहसिन खान कहते हैं,
हम उन्हें समझा रहे हैं कि किसी भी ऐसे बच्चे जो पढ़ने लिखने अच्छे, हमारे बच्चे मेजोरिटी बच्चे अच्छे हैं, 1200 बच्चे है भी नहीं, 950 बच्चे कश्मीरी हैं एज पर रिकॉर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी। उसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है जिसमें उन्हें जाना चाहिए। हम सब कहते हैं आप लोग यहाँ रहें, आप लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। हमने उन्हें शोकाज दिए हैं, शोकाज के माने हैं आप अपना पक्ष रखें और ये सारे पक्ष आपके इंक्वायरी कमेटी के सामने रखे जाएंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी निर्णय।
हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि विश्वविद्यालय छोड़ने की धमकी देने वालों में कुछ ही कश्मीरी छात्र शामिल हैं, कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। वहीं इस मामले में जहां AMU परिसर का माहौल गर्म है तो अब इसकी वजह से परिसर के बाहर राजनीतिक गर्मी भी बढ़ने लगी है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
सीरिया में 7 सालों के भयानक गृह युद्ध में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों के मारे जाने के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद उन ताकतों से जीत हासिल करने के करीब हैं जो उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहती थी। आखिर बशर अल असद कैसे इस भयावह युद्ध में जीत के करीब पहुंचे? बीबीसी पेनोरमा और बीबीसी अरबी की संयुक्त पड़ताल में पता चला है कि रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की भूमिका असद के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम रही है। नवाल अल मकाफी की रिपोर्ट सुनिए कीर्ति दुबे से।
असद की सरकार ने सीरिया में लोगों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल व्यापक स्तर पर किया गया था, इस बात के पक्के सबूत हैं और बीबीसी पूरी तरह से आश्वस्त है कि सीरिया में सितंबर 2013 में कम से कम 106 रासायनिक हमले हुए हैं। इसी दौरान राष्ट्रपति बशर अल असद ने इंटरनेशनल केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC पर हस्ताक्षर किया था और देश के रासायनिक हथियारों के जखीरे को नष्ट करने पर सहमति जताई थी। सीरिया ने राजधानी दमिश्क के उपनगरीय इलाकों में एक रासायनिक हमले के बाद CWC पर हस्ताक्षर किया था। इस हमले में नर्व एजेंट का इस्तेमाल किया गया था और सैकड़ों लोग मारे गए थे। पीड़ितों की दिल दुखाने वाली तस्वीरें देख दुनिया स्तब्ध रह गई थी। पश्चिम के देशों ने इस हमले को लेकर कहा था कि ऐसा केवल सरकार ही कर सकती है, लेकिन राष्ट्रपति असद ने इस हमले के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया था। तब अमेरिका ने सीरिया पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दी थी, लेकिन असद के अहम सहयोगी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सीरिया में रासायनिक हथियारों के जखीरे को नष्ट करवाने के समझौते पर पहुंचने में कामयाब रहे थे। इस समझौते के बाद अमेरिका नरम पड़ गया था। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स और संयुक्त राष्ट्र की ओर से सीरियाई सरकार की घोषित 1300 टन रासायनिक हथियार नष्ट किए जाने के बावजूद सीरिया में रासायनिक हमले जारी रहे। इस शोध को करने वाले बीबीसी के नवल अल मकाफी बताते हैं,
क्लोरीन इज अ वेरी हैवी केमिकल, इट सिंक्स डीप अंडरग्राउंड।
क्लोरीन एक बहुत भारी रसायन है, ये जमीन की गहराई तक चला जाता है। जब क्लोरीन को छोड़ा जाता है तो वो तत्काल गैस में बदलता है। ये गैस हवा से भी भारी होती है और कम दबाव वाले इलाकों में प्रवेश करती है। लोग बेसमेंट में छिप रहे थे और पूरी तरह से हर जगह अफरा तफरी का माहौल था। जब क्लोरीन आंख, गला और फेफड़े जैसे नम टिश्यू के संपर्क में आता है तो इससे निकलने वाला एसिड काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है।
हालांकि सीरियाई सरकार का कहना है कि उसने कभी क्लोरीन का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बीबीसी की पड़ताल में पता चला है कि एलेपो में 11 ठिकानों पर हुए हमलों में क्लोरीन का इस्तेमाल किया गया था। 2016 में सीरिया के अलेपो शहर में असद की सेना आने से पहले विपक्षियों का कब्जा था। अबू जाफर अलेपो में रहते हैं और वे कहते हैं, रासायनिक हमले खौफनाक थे, बिना किसी एहसास के मौत की नींद सुला दी जाती थी, लेकिन इन हमलों के बाद जो हालात पैदा होते उनसे लोग धीरे धीरे मरते। ऐसा लगता है कि पूरे इलाके में ऑक्सीजन नहीं है और लोग मौत के समंदर में गोते खा रहे हैं। सच में ये बेहद खौफनाक है। हालांकि असद हमेशा रासायनिक हमले से इनकार करते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय आयोग और यूएन से जुड़ी अन्य टीमों ने भी अपनी जांच में कहा है कि 18 अन्य मामलों में भी रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। पेनोरमा और बीबीसी अरबी ने सीरिया में रासायनिक हमले की 164 रिपोर्टों की पड़ताल की। सीरिया में ये घटनाएं CWC पर उनके हस्ताक्षर किए जाने के बाद हुए हैं। बीबीसी टीम इस बात को लेकर सुनिश्चित है कि 164 हमलों में से 106 में रासायनिक हथियार इस्तेमाल किए गए और इस बात के पक्के सबूत हैं। दूसरी तरफ कुछ ही घटनाएं मीडिया में सुर्खियां बनी। हमले का जो पैटर्न है उससे पता चलता है कि रासायनिक हमले का इस्तेमाल किया गया है।
सीरिया में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल। आज सोमवार है और आज के दिन आप इंतजार करते हैं अपने पत्रों का,
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और आज एक बार फिर मेरे साथ हैं
सूर्यांशी पांडे।
सूर्यांशी पांडे का भी नमस्कार, और हम अपने श्रोताओं से गुजारिश करेंगे कि कार्यक्रम के शुरुआत में गुजारिश कर दे रहे हैं कि जो चिट्ठी आप लिखें, हाथ से जो लिखते हैं उसको साफ साफ लिखें ताकि हमको पढ़ने में आ जाए। ये एक पोस्ट कार्ड हमारे सामने रखा हुआ, एक नहीं है दरअसल 6 पोस्ट कार्ड रखे हुए हैं, एक साथ नत्थी करके भेजे हैं इन्होंने, जिनका नाम है सुलेमान खान है और इन्होंने 786 ऊपर लिखा हुआ है। लिखते हैं, पोस्ट ऑफिस भैंसिया छाना, नासेरा घाट, जिला अल्मोड़ा से, उत्तराखंड से। अब ये पूरी 6 की 6 इनके पोस्ट कार्ड पढ़ना तो संभव नहीं है सुलेमान भाई, लेकिन सूर्यांशी ने आपकी चिट्ठी पढ़ ली है। सूर्यांशी बताइए इसमें लिखा क्या है।
हाँ, इसमें इन्होंने जो मूल मंत्र जो लिखा है ना, वो ये लिखा है कि करीब 11 साल की उम्र से वो बीबीसी सुन रहे हैं, तो अब उनकी उम्र हो गई है 67 साल, और वो कह रहे हैं कि बीबीसी से मैंने जो सीखा वो तो मैंने MA करके भी नहीं सीखा।
अरे सुलेमान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप इसी तरह से चिट्ठियाँ लिखते रहें। संक्षेप में चिट्ठी लिखें और साफ हैंडराइटिंग में लिखेंगे तो बहुत आसानी होगी। शुक्रिया।
मुझे लगता है राजेश जोशी जी, आपकी ये बात ना राजेश कुमार पांडे ने अपने जहन में, क्योंकि अंबेडकर नगर से इन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत लिखाई में लिखा है, और ये लिखते हैं कि मैं आपका नियमित एवं पुराना श्रोता हूँ, आपके सभी कार्यक्रम बेहद रोचक है एवं ज्ञानवर्धक है, परंतु हमसे पूछे कार्यक्रम की याद बहुत आती है।
ये बहुत पुराने श्रोता है, क्योंकि हमसे पूछे कार्यक्रम हुआ करता था उस जमाने में जब इंटरनेट नहीं था और लोगों को बहुत छोटी छोटी जानकारी हासिल करने के लिए भी या तो लाइब्रेरी जाना पड़ता था या फिर किसी से पूछना पड़ता था, तब हम ये कार्यक्रम करते थे हमसे पूछिए। अब सबके पास मोबाइल फोन है, उसमें गूगल है, सब गूगल कर सकते हैं, इसलिए हमसे पूछिए कार्यक्रम का उतनी कोई उपयोगिता बची नहीं रही, तो इसलिए हमने बंद कर दिया।
और साथ ही साथ इंटरनेट के जरिए एक और फायदा हुआ कि हमारे श्रोता अब हमसे ईमेल के जरिए जुड़ सकते हैं।
बहुत सारे ईमेल्स मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में है, बताइए कहाँ से शुरुआत करेंगे।
हाँ, ये ईमेल भेजा है एहसान मुल्तानी ने, ये भेजते हैं नजीबाबाद से।
नजीबाबाद
हाँ।
जी
हाँ। तो ये लिखते हैं कि वसतुल्ला खान साहब की आज की पेशकश दिल को छू लेने वाली थी, वाकई पता नहीं कब हम कब संभलेंगे।
अच्छा, ये वसतुल्ला साहब जो लिखते हैं वो वाकई झकझोर देते हैं कई बार आपको, और उनके पसंद करने वाले हिंदुस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं और लंदन में भी हैं।
और ये अगला ईमेल है, ये पीके बैनर्जी ने भेजा है, अयोध्या बाईपास रोड, एड्रेस लिखा है इन्होंने भोपाल से।
भोपाल जी,
इनका कहना है कि 13 अक्टूबर का इंडिया बोल कार्यक्रम सुना, पहली बात तो ये कि इस बात से बड़ी खुशी हुई कि आपके श्रोताओं में महिला श्रोताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। कार्यक्रम के दौरान 6 महिलाओं व 1 पुरुष ने भाग लिया, परंतु एक प्रश्न फिर भी अनुत्तरित रह गया कि क्या इतने वर्षों बाद मीटू द्वारा आवाज़ उठाने के बाद कोर्ट में अपनी बात सिद्ध करना संभव हो सकेगा।
ये बहुत बड़ा सवाल है जो चारों तरफ उठ रहा है कि जिन महिलाओं ने अपने साथ कथित तौर पर जो ज्यादती हुई है उसके बारे में जो लिखा है, क्या वो अदालत में सिद्ध कर पाएंगी, ये सवाल है, अभी अनुत्तरित ही है, आपने ठीक कहा। लेकिन मी टू जो अभियान है उसको इंडिया बोल में उस पर चर्चा करके हम चाहते थे कि महिलाओं की आवाज़ आए, उसमें जितनी भी महिलाओं ने हिस्सेदारी की बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही तार्किक ढंग से अपनी बात उन्होंने रखी, वो मुझे लगता है कि हमारी जो महिला श्रोता इस वक्त सुन रही हैं उनको भी इससे उत्साह का उनमें संचार होगा और वो भी हमारे लिए या तो कार्यक्रम में हिस्सेदारी करेंगी या अपनी चिट्ठियाँ लिखेंगी, ये उम्मीद हमें है।
बिल्कुल। अगला ईमेल भेजा है मुकेश कुमार ने, जो पटना से लिखते हैं, और इनका ये कहना है कि 14 अक्टूबर को आपने जो पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह का साक्षात्कार प्रसारित किया, उसे सुनकर काफी अच्छा लगा।
और एक ये ईमेल मैं देख रहा हूँ आपके पास, महेश बिहारी शर्मा लालसोट राजस्थान से लिखते हैं, आज के कार्यक्रम में दिलनवाज पाशा का लेफ्टिनेंट जनरल से की गई बातचीत पूरी तरह हिंदू विरोधी है, क्या इस देश में सिर्फ मुसलमानों पर ही हमले होते हैं, बीबीसी इस तरह के साक्षात्कार से इस देश की छवि न बिगाड़े तो बेहतर होगा, ये कहना है महेश बिहारी शर्मा का। तो महेश जी, मैं आपके सामने पहले जो हमारे श्रोता हैं उनकी चिट्ठी भी है और आपके विचार भी हैं, दोनों विचारों को हमने सामने रखा, हमारी जिम्मेदारी है हर तरह के विचारों को हम बीबीसी श्रोताओं के सामने पहुंचाएं ईमानदारी से। तो उसी सिलसिले में हमने जो एक रिटायर्ड फौजी हैं, एएमयू के वाइस चांसलर रहे हैं और बड़े बड़े मुअज्जज़ आदमी हैं, उनका इंटरव्यू, उनके विचार प्रसारित किए, तो आपको पसंद नहीं आए लेकिन हमारे दूसरे श्रोताओं को पसंद आए, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। तो अब इसी के साथ ही, माफ कीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन अब समय समाप्त हुआ, चलते चलते पता बताते हैं, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल का पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मीटू अभियान के तहत विदेश राज्य मंत्री और पूर्व संपादक एमजे अकबर ने उन पर आरोप लगाने वाली एक महिला पत्रकार पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। बीबीसी को इस बात के सबूत मिले हैं कि 5 साल पहले सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने अपने देश में हथियारों के भंडार को नष्ट करने पर सहमति जताई थी और तब से सीरिया में 100 से अधिक रासायनिक हमले हो चुके हैं। जॉर्डन और सीरिया की सीमा पर 3 साल के अंतराल के बाद पहली बार कुछ कारों ने बॉर्डर पार किया। इस कमर्शियल बॉर्डर को 3 साल पहले तब बंद कर दिया गया था जब इस पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। इटली के प्रधानमंत्री मैटियो सेल्विनी ने यूरोपीय संघ की ओर से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को मूर्खतापूर्ण कदम बताया है। साल 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था तब यूरोपीय संघ ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यही विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।